ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಬ್ನೆ ಕಹಾ ಓಂ ಶಾಂತಿ, ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಆಪ್ ಸಬ್ಕೋ ಮಧುಬನ್ ಮಹಾತೀರ್ಥ ಪರ್ ಅಪ್ನೆ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್ ಮೇ ಆನೆ ಕಿ, ಸ್ವರ್ಗಾಶ್ರಮ ಮೇ ಆನೆ ಕಿ, ಚಾರೋ ಧಾಮ ಕರ್ನೆ ಕಿ, ಔರ್ ಯಹಾಂ ಕೆ ಕಣ ಕಣ ಈಶ್ವರೀಯ ಶಕ್ತಿಯೋ ಸೆ ಅನುಪ್ರಾಣಿತ ಹೈ, ಊರ್ಜಾ ಸೆ ಊರ್ಜಿತ ಹೈ, ಉಸ್ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ಣ ಶಾಂತ ತಪಸ್ಯಾ ವಾಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕಾ ಅನುಭವ ಕರ್ನೆ ವಾಲೋ ಕಾ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಫಿರ್ ಸೆ ಮಧುಬನ್ ಮೇ ಆನೆ ಕಿ, ಚಾಹೆ ಭಟ್ಟಿ ಕೆ ಲಿಯೆ, ಚಾಹೆ ಸೇವಾ ಕೆ ಲಿಯೆ, ಚಾಹೆ ವೈಸೆ, ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಪ್ ಸಬ್ಕಾ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಸ್ವಾಗತ ಹೈ, ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಅಭಿನಂದನ್. ಆಜ್ ಕೆ ಮುರಳಿ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಭಿ ಸಭಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಮುಖ ವಂಶಾವಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಕಾ ಜ್ಞಾನ ಕಾ ತೀಸರಾ ನೇತ್ರ ಪಾನೆ ವಾಲೋ ಕಾ ಔರ್ ಈಶ್ವರೀಯ ಗೋದ ಮೇ ಆನೆ ವಾಲೋ ಕಾ ಅದ್ವೈತ ರಾಜ ಬನಾನೆ ವಾಲೋ ಕಾ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಏಕ್ ಧರ್ಮ ದೈವೀ ಧರ್ಮ ಹೋ ಉಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಯೋಗ ಬಲ ಜಮಾ ಕರ್ನೆ ವಾಲೋ ಕಾ ಔರ್ ಬಾಹುಬಲ್ ಸೆ ಸಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪರ್ ಕೋಯ್ ರಾಜ ಕರ್ ನಹೀ ಸಕ್ತಾ, ಯೇ ಲಾ ನಹೀ ಕರ್ತಾ ಕಹತಾ ಕಿ ಕೋಯ್ ರಾಜ ಕರ್ ಲೇ, ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕೋ ಸಮಝನೆ ವಾಲೋ ಕಾ ಔರ್ ಧಾರಣಾ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಅಪ್ನಾ ಸಬ್ ಕುಛ್ ತನ್ ಮನ್ ಧನ್ ಸಬ್ ಸೇವಾ ಮೇ ಲಗಾನೆ ವಾಲೋ ಕಾ, ಭಾರತ ಖಾಸ ಆಮ ದುನಿಯಾ ಕಿ ಸೇವಾ ಕರ್ನೆ ವಾಲೋ ಕಾ ಅಪ್ನಾ ತನ್ ಮನ್ ಧನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಶ್ವರ ಕೋ ಅರ್ಪಿತ ಕರ್ಕೆ ಅರ್ಪಣ ಕರ್ಕೆ ಸೇವಾ ಮೇ ಲಗಾನೆ ವಾಲೋ ಕಾ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಖೋಲ್ನೆ ವಾಲೋ ಕಾ, ಏಕ ರಸ ಸ್ಥಿತಿ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಕಿ ಅನುಭೂತಿ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ, ಸರ್ವ ಆಕರ್ಷಣೋ ಸೆ ಮುಕ್ತ ರಹನೆ ವಾಲೋ ಕಾ, ಸದಾ ಅಚಲ ಅಡೋಲ್ ಏಕ ರಸ ಸ್ಥಿತಿ ರಹನೆ ವಾಲೋ ಕಾ, ಬುದ್ಧಿ ಕಿ ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕರ್ಕೆ ಏಕ್ ದೋ ಕೆ ಮನೋಭಾವೋ ಕೋ ಜಾನ್ ಲೇನೆ ವಾಲೋ ಕಾ. ಔರ್ ಆಜ್ ಇಸ್ ವಿಶೇಷ ಸತ್ರ ಮೇ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಪ್ ಸಬ್ ಕಾ, ವಿಶೇಷ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಆತ್ಮಾವೋ ಕಾ, ದಿವ್ಯ ವಿಭೂತಿಯೋ ಕಾ ಫಿರ್ ಸೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೈ, ಅಭಿನಂದನ್. ಮಧುಬನ್ ಮೇ ಆತೆ ಹಿ ಹಮ್ ಸಾಮ್ನೆ ದೇಖತೆ ಹೈ ಉಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೆ ತೋ ಲಿಖಾ ಹೈ ಮೀಠೆ ಬಚ್ಚೆ ಪ್ಯಾರೆ ಬಚ್ಚೆ ಆಓ ಬಚ್ಚೆ ಅಪ್ನೆ ಮಧುಬನ್ ಘರ್ ಮೇ ತಪಸ್ಯಾ ಕರೋ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ತಪಸ್ಯಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಯೆ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಇಸ್ಕೆ ಪಹಲೆ ಲಿಖಾ ಹೋತಾ ಥಾ ಬೋರ್ಡ್ ಪರ್ ಆಓ ಬಚ್ಚೆ ಮೀಠೆ ಬಚ್ಚೆ ಪ್ಯಾರೆ ಬಚ್ಚೆ ಅಪ್ನೆ ಮಧುಬನ್ ಘರ್ ಮೇ ವಿಶ್ರಾಮ ಕರೋ. ಘರ್ ಮೇ ತಪಸ್ಯಾ ನಹೀ ಹೋತಿ, ಘರ್ ಮೇ ತೋ ಸಬ್ ತರಫ್ ಸೆ ಥಕ್ ಕೆ ಆತೆ ಹೈ ತೋ ವಿಶ್ರಾಮ ಹೋತಾ ಹೈ. ಔರ್ ಬಾಬಾ ಕಿ ಯೇ ಬೋಲ್ ಇತನೆ ಪ್ಯಾರೆ ಲಗತೆ ಥೇ, ಆಓ ಬಚ್ಚೆ ಮೀಠೆ ಬಚ್ಚೆ ಅಪ್ನೆ ಮಧುಬನ್ ಘರ್ ಮೇ ವಿಶ್ರಾಮ ಕರೋ. ಯೇ ಸುನ್ತೆ ಹಿ ಹಮಾರಿ ಕೈ ಜನ್ಮೋ ಕಿ ಥಕಾನ್ ಛೋ ಮಂತರ್ ಹೋ ಜಾತ ಹೈ, ಏಕ್ದಮ್ ಗಾಯಬ್ ವಹಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೋತಿ ಹೈ. ಹಮೇ ತೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೋತಿ ಹೈ, ಆಪ್ಕೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೋತಿ ಹೈ, ಕಿಸ್ಕೋ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ಮಧುಬನ್ ಮೇ ಆನೆ ಪರ್ ಸಾರಿ ಥಕಾನ್ ಖತಮ್, ಸಾರಿ ಥಕಾನ್ ಖತಮ್ ಖತಮ್ ಹೋ ಜಾತಿ ಏಕ್ದಮ್. ಐಸಾ ತೋ ನಹೀ ಯಹಾಂ ಸೇವಾ ಕರ್ತೆ ಥಕ್ ಜಾತೆ ಹೋಂಗೆ, ಔರ್ ಮಧುಬನ್ ಮೇ ಆನಾ ಹಿ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಭಾಗ್ಯ ಹೈ. ಜಿತ್ನಾ ಭಾಗ್ಯ ಕಾ ಹಮ್ ಸಿಮರಣ ಕರ್ತೆ ಜಾತೆ ಹೈ जो प्राप्तियों का अनुभव करते जाते हैं उसके पीछे मेहनत कोई मेहनत नहीं। और यहां पर तो निमित्त मधुबन घर में सेवा का अवसर मिले, यहां पर आने को अवसर मिले, चारों धाम करने को सब लालायित रहते हैं। कितने भाई बहने हमने देखा शांति वन में आते हैं तो उनके मन में आता है कि एक अमृत वेला बाबा के घर में मिल जाए कितना अच्छा है, सबकी लालच होती है। और आप वहां सेवा के लिए मौका मिल जाए तो इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। अब यहां पर आने के बाद जो भाग्य मिला है उस भाग्य को और बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या जरूरी है कि यहां के वातावरण में जितना हम अंतर्मुखी होके साइलेंस में होकर एक एक जगह बैठकर यहां जो वाइब्रेशंस भरे हैं, जो पवित्रता का है, तपस्या का है, आदि रत्नों की यहां पर कर्म भूमि रही है, सेवा भूमि है, चरित्र भूमि है, देवों की रंग भूमि है, ये देवताओं की कर्म भूमि है ना। कोई ज्योतिषी आए तो उन्होंने कहा ये जो बाबा की कुटिया है यहां से लेकर के शांति स्तंभ तक ये जो रास्ता है यहां पर मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है। जैसे वहां आए तो उनका जो पेंडुलम देखने का है वो पूरा चक्कर लगाने लगा, इतना मैग्नेट बहुत बड़ी पावर है। क्योंकि यहां पर जगत पिता ब्रह्मा बाबा यहां चलते थे, ये जो जगह है सुबह शाम हम सब भी चलते हैं, दादियों ने यहां पर पूरा जीवन लगा दिया है ना, पूरा जीवन लगा दिया। तो ऐसे दिव्य स्थान पर आने के बाद ये लक्ष्य ना हो कि जो मिल रहा है वही आनंद ले, उसको बढ़ाना भी है। क्या करेंगे उसके लिए, क्या ध्यान रखेंगे? एक तो मधुबन में आने के बाद मधुबन की इस तपस्या भूमि का पूरा पूरा लाभ लेने के लिए जितना जितना हम मौन में रहें, कम से कम बोले, ये हमारे लिए भी अच्छा है और मधुबन की भूमि को भी हम शांतमय बनाएं, बहुत कम आवाज करें, इससे मधुबन की भूमि भी और भी सबका सहयोग मिलेगा। शक्तिशाली तो है लेकिन और ही शक्तिशाली हो जाए। तो हम सबको लक्ष्य बनाना चाहिए कि कम से कम जितना समय मिले हम सब कम से कम मिनिमम मौन में करें। वैसे भट्टी वालों को कहा जाता है कि यहां पर आने के बाद 3M उसका मौन चाहिए, मन का मौन चाहिए, मुख का मौन चाहिए और मोबाइल का मौन चाहिए। मोबाइल का मौन बहुत जरूरी है, नहीं तो क्लास में बजने लगता है, चलते फिरते बजने लगता है, फोन भी करते हैं, किसी को कम सुनाई पड़ता है जोर जोर से फोन करते हैं, है? किचन में भी जाएं, डाइनिंग हॉल में भी रहें, जहां भी जाएं, लक्ष्य हो कि मेरा स्वयं की कमाई के लिए, और हम मधुबन में आए हैं तो मधुबन के वातावरण को और शक्तिशाली बनाएं, इसके लिए कितना कम से कम बोल सकते हैं, इस पर हमारा ध्यान हो। दिनचर्या में भी ध्यान हो कि जितना हो सके हमारी वाणी में कम आने की मार्जिन हो, क्योंकि देखा गया है कि बहिर्मुखता वो हमारी सर्व प्राप्तियों में एक बहुत बड़ा छिद्र है, वो लीकेज है। आज बाबा जब कह रहे थे वरदान में कि एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त बनो, कोई भी संबंधों का आकर्षण हो या फिर कर्मेंद्रियों का आकर्षण हो, कोई भी आकर्षण हमको आकर्षित न कर सके, और जब एक रस स्थिति बन जाए, क्योंकि कर्मेंद्रियों का आकर्षण कर्मेंद्रियों के रस में आत्मा को आकर्षित कर लेता है और रस लेते लेते रस में जब लिप्त हो जाता है तो वो बहुत ही कमजोर हो जाती है आत्मा। हम सब भी अपने दिनचर्या में चेक करें कि हमारी कर्मेंद्रियों का जो रस है, अगर हमारे जीभ का रस भोजन के प्रति आसक्त हम हैं, सारे दिन में ये खाऊं कि वो खाऊं, ये मिले कि वो मिले। बहुत लोग तो प्लान बनाते हैं कि दोपहर को क्या खाना है, तो सवेरे से ही प्लानिंग शुरू कर देते हैं, यहां से वो इकट्ठा करेंगे, वहां से वो इकट्ठा करेंगे, ये बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जिसे महायज्ञ, ये पेट भी को भी यज्ञ कहते हैं ना, तो पेट पूजा को ही वो महायज्ञ मान लेते हैं। और जब इसमें बिजी हो जाते हैं तो जो प्राप्ति होनी चाहिए उसमें हम नहीं पाते हैं। इसलिए ब्राह्मण बनने के बाद जहां पर ब्राह्मणों को अति प्रिय क्या होता है, भोजन। अति प्रिय भोजन ब्राह्मण प्रिय भोजनम, ये ब्रह्मा भोजन तो बहुत प्रिय लगता है, वो खाएं जरूर, लेकिन आनंद लें, बाबा का धन्यवाद करें और उसको बड़े प्रेम से स्वीकार करें, लेकिन बहिर्मुखी होकर नहीं। बहिर्मुखता ये हमारे प्राप्तियों में बहुत बड़ा लीकेज है। तो आज ये के क्लास से हम सब ये निर्णय लेते हैं कि एक रस स्थिति हमारी बनती जाए, क्योंकि एक रस स्थिति के बिना अतीन्द्रिय सुख क्या है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक रस स्थिति में ही आता है, जैसे जब शरीर में वात पित्त कफ इन सब का पूरा बैलेंस है, जब शरीर में आपका हर चीज बैलेंस में है तब शक्ति का अनुभव होता है। वैसे ही जब हम अपनी स्थिति में एक रस स्थिति बना लेते हैं तभी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। नहीं तो दिन की दिनचर्या में देखा गया, एक दिन तो लगा कि योग में हमको खूब आनंद आया, इतना आनंद आया, खूब उछल रहे, वाह बाबा वाह, आज तो आनंद आ गया सवेरे से लेकर शाम तक। देखा गया कि 4 घंटा 5 घंटा आपका बहुत अच्छा योग का चार्ट है, खूब आनंद है, और दूसरे दिन देखा तो फिर नीचे आ गए। तो ऐसी तो अलग अलग स्थितियों का हम सबको अनुभव है, सब अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव है, लेकिन कभी कभी हुआ है, बाबा में खो जाने का, लवलीन होने का भी अनुभव हम सबको है, लेकिन कभी कभी है। एक रस स्थिति नहीं है। और हम सबके पुरुषार्थ का वर्तमान समय पर सार भी यही होना चाहिए कि हम अपनी अवस्था को, अपनी स्थिति को एक रस बनाते चले, क्योंकि एक रस स्थिति ही संपन्नता और संपूर्णता की दिशा में आगे बढ़ने का एक सशक्त कदम है। जब एक रस अवस्था होगी तब हमारी एकाग्रता बढ़ जाएगी, और एकाग्रता बढ़ने पर हम ईश्वरीय मिलन का और ईश्वरीय शक्तियों का और ईश्वरीय जीवन का हम आनंद ले पाएंगे। एकाग्रता नहीं है, मन भटक रहा है, बुद्धि भटक रही है, कुछ भी नहीं पा सकते हैं। इसलिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। हम दुनिया वालों को भी बताते हैं कि राजयोग सीखने से बुद्धि की एकाग्रता बढ़ जाती है, लेकिन हम अपने आप को भी पूछते जाए कि हमारा दिन भर में या योग में हम जब बैठते हैं तो हमारा मन कहां कहां और किस दिशा में, कितने कोने में, कहां कहां भटकता है, उनको नोट करें। तो आइए एक थोड़ा सा चिंतन कर लें कि एकाग्रता में बाधक तत्व कौन से हैं, एकाग्रता क्यों नहीं हो पा रही है, या होती भी है तो एक रस स्थिति क्यों नहीं बन रही है? ठीक है, एकाग्रता को भंग करने का सबसे बड़ा कारण है हमारी कामनाएं, इच्छाएं। इच्छाएं और कामनाएं जितनी हमारी बढ़ेंगी, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये वो भी ले लूं, क्या कर लूं, क्या कर लूं, लेकिन एक जगह भी पहुंच नहीं पाते। वो कहते हैं ना, एक छोर पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। जब हम कई लक्ष्य लेकर चलते हैं तो एक जगह सफल नहीं हो पाते हैं। तो हमारी बुद्धि का लक्ष्य क्लियर हो, सवेरे उठें और चिंतन करें। उठते ही हमारा चिंतन हो, एक स्वमान ले लें और उस स्वमान के साथ अपनी बुद्धि का अपना गोल, अपना लक्ष्य, आज मेरा क्या लक्ष्य है, ये फाइनल कर लें। पहला गोल तैयार करें, लक्ष्य तैयार करें। आप अपने आप से पूछें, आज मैं जब सवेरे उठा या दिन भर में, आज मैंने लक्ष्य क्या बनाया, क्या लक्ष्य था? कोई लक्ष्य था? देखा उठ गए, अब योग में जाना चले गए, मुरली में जाना था चले गए, सेवा में जाना है चले गए, लेकिन लक्ष्य क्या बनाया? क्योंकि जब लक्ष्य ही नहीं होगा, हमारा उद्देश्य ही नहीं है, हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, हमारा गोल क्या होना चाहिए, फोकस कहां करना है, वो पता नहीं है। तो रोज सवेरे उठें तो एक संकल्प ले लें कि आज मैं इस शरीर में अवतार लिए हुआ हूं, मैं अवतरित हुआ हूं, और इस शरीर में और इस संसार में रोज का दिन एक नया बीते, नया रंग। ऐसा सोचें कि कल की बात पुरानी, कल की बात, कल दूसरी दुनिया थी, वो दूसरा जीवन था, आज के दिन मुझे बाबा ने भेजा, मैं फरिश्ता आया हूं, इस शरीर का आधार लिया हूं। ऊपर से देखने में लगता है कि हम सब संबंधी हैं, कोई माँ है, कोई पिता है, कोई बच्चे हैं, भाई हैं, बेटे, लेकिन अंदर से मेरा है कि रहे मैं तो फरिश्ता हूं, मैं तो फरिश्ता हूं, और आज के दिन केवल मैं अवतरित हुआ हूं, इस संसार में आया हूं, ईश्वरीय प्रेरणा से आया हूं, ईश्वरीय कार्य के लिए आया हूं, परमात्मा के कार्य के लिए आया हूं। और दिन भर में जिनको देखना है उनको हमें आत्मिक दृष्टि से देखना है, और सबके लिए शुभ संकल्प करना है कि सभी इच्छाओं से, कामनाओं से, विषयों में जो अंतरजाल, जो नेटवर्क, जो संसार के जाल में आत्मा इस जंजाल में उलझ गई है, इन आसक्तियों से सबको मुक्त करें, सबको बाबा का पैगाम दें, हमारी अनासक्त स्थिति उनको अनासक्त बनने की प्रेरणा दे, और सबको पंख लगा के उड़ा के लेकर चलूं और बाबा को रिजल्ट दूं कि बाबा आज आपने हमको भेजा था अपने काम के लिए, आज मैं इतना काम करके आई हूं। ठीक है? नहीं तो बाबा कहे बच्ची तुमको भेजा आज मैंने, तुमने क्या किया है? क्या किया? कुछ तो करना चाहिए ना। तो क्या लक्ष्य है हमारा? एक एक समय संगम युग का बड़ा अनमोल है। आगे बढ़ने के लिए, पुरुषार्थ में गति प्रदान करने के लिए, और दिनचर्या को और शक्तिशाली बनाने के लिए वर्तमान समय के महत्व को अपने बुद्धि में जरूर रखना है। जिसने भी अपने समय को, संगम युग के समय को इंपॉर्टेंस दिया है, जिसने महत्व दिया है, वो महत्वपूर्ण हो गया है। जगदीश भाई जी का दिन आ रहा है 12 मई। जगदीश भाई का नाम लेते ही, उनको याद करते ही, उनका जो वक्त के पाबंद थे, समय के बहुत ही पालक थे, समय पर पहुंचना है, समय पर कार्य करना है। एक बार उनका रथवान हमारे एक भाई हैं, यहां पर है, वो अपना अनुभव सुनाते हैं कि एक बार भाई जी को कहीं जाना था, तो मैं गेट पर, वहां मुझे पहुंचना था, लेकिन गलती से 5 से 10 मिनट लेट हो गया मैं, और भाई जी वहां इंतजार कर रहे थे। भाई जी ने देखा कि अभी तक आया नहीं, संकल्प चल रहे हैं, उनको तो टाइम पर पहुंचने की आदत है, सब काम समय पर करना है, सब समय पर। तो जब वो पहुंचे तो भाई जी क्या करें, गुस्सा भी नहीं कर सकते हैं, समझाना भी है, नुकसान भी हो गया है। कहा भाई महादेव ये बात ठीक नहीं, बहुत लेट कर दिया आपने, अब आपको इसकी सजा मिलनी चाहिए। तुम कान पकड़ो अपना और 50 बार उठो बैठो, 50 बार उठो बैठो। वो घबरा गया भाई, 10 बार बैठा, फिर 10 बार और बैठा, कहते भाई जी अब नहीं बैठ, कहते बस करो ठीक है। इतना रियलाइज कराई भाई जी ने, फिर उसके साथ गए। कहने का भाव ये है कि हमें किसी भी कीमत पर समय को सफल करना है। आज जो बाबा की मुरली का तंतु था, सार था, घड़ी घड़ी अपने तन मन धन को सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्पण करना है, सब कुछ सब सफल करो, समय सफल हो, आपका तन मन धन समय श्वास संकल्प सब सफल हो। उसके लिए हम सबको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये गया वक्त फिर आने वाला नहीं है। ठीक है, तो पहला है अपना लक्ष्य सामने रखें, रोज का लक्ष्य बनाकर अपनी दिनचर्या का आरंभ करें, तब आपकी दिनचर्या में एकाग्रता बढ़ेगी, आपका लक्ष्य प्रमाण आपकी दिनचर्या चलेगी और वो सफल भी हो सकेगी। दूसरा बताया कि आपकी कामनाएं, जो जितनी कामनाएं, एक लिस्ट बना लें, उस लिस्ट में देख लें कि मेरा मन दिन भर में कार्य करते हुए कहां कहां भटकता है, किन किन बातों में जाता है। 3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल का रिकॉर्ड बज रहा है, अब 3 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल के रिकॉर्ड के समय पर हमारी बुद्धि कहां कहां गई, कितनी दिशा में गई, कहां कहां गई, क्यों भटक रहा है, कहां ढूंढता है मन। मन तो वहां जाता है, या तो उसको हमने फ्री छोड़ दिया है, वो चला जाएगा सब जगह, या तो जहां उसको आनंद मिलता है, अच्छा लगता है, वहां जाता है। मन तो जाएगा ना, उसको तो कहीं ना कोई काम नहीं देंगे तो जाता रहेगा। या तो जहां पर आपका इंटरेस्ट होगा, जो आदत होगी, तो बहिर्मुखी मन को एकाग्र करने का ये भी मार्ग है। अपनी चेकिंग करें कि मैं कितना बहिर्मुखी हूं। इसलिए दिनचर्या में जरूरी है कि हर भाई बहन को, हर पुरुषार्थी को 1 घंटा समय एकांत में देना ही चाहिए, 1 घंटा समय। अगर हम भीड़ में हैं, सुबह से शाम तक लगे हैं, तो भीड़ में कहते हैं अकल नहीं होती, जिधर सब जा रहे हैं वही कर रहे हैं। अगर कुछ पाना है तो चिंतन को बढ़ाना है। एक अच्छे चिंतक के लिए बहुत जरूरी है कि वो संगठन में रहते हुए भी, भीड़ में रहते हुए भी, अपने लिए एकांत का समय जरूर निकाले, प्रकृति के सानिध्य में जाए, हो सके तो थोड़ा समय भीड़ से अलग भी बैठे, और हो सके तो अगर भीड़ से भी न निकल सके तो अपने मन से वार्तालाप करने के लिए घर में भी एकांत में बैठें, कि जहां पर केवल और केवल आप आत्मचिंतन करें। जो चार्ट होता है वो तो शाम को हम चार्ट लेते हैं, लेकिन बाबा तो कहते हैं घंटे घंटे पर अपना चार्ट नोट करना चाहिए, लेकिन चलो घंटे पर भी नहीं लिख पाते हैं तो शाम को तो चार्ट लिखें, लेकिन कहीं शाम को भी नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि शाम को लिखेंगे भी तो चेकिंग तो हुई लेकिन चेंज करने का मौका ही नहीं मिला, फिर तो रात को सोना होता है। इसलिए बाबा कहते हैं दिन की चेकिंग भी होती है। हालांकि मैं भी जब से मधुबन में आया तब से चार्ट लिख रहा हूं, उसके पहले से, कक्षा 9 में था मैं पढ़ रहा था, तब मैं मिर्जापुर ओबरा में था, बहुत छोटा था, कक्षा 9 में पढ़ रहा था, तब से मैं चार्ट लिख रहा हूं। और उस चार्ट ने, लिखते लिखते चार्ट ने लिखना सिखाया, रचना करना सिखाया, बात करना सिखाया, बहुत फायदा मिला। उन चीजों को व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जब जीवन में आगे बढ़ना है तो कोई न कोई प्रिंसिपल बनाए। मैंने भी मधुबन में जब आया तो अपने लिए 4-5 बातों का प्रिंसिपल बना लिया, सिद्धांत बना लिया अपने लिए जीवन पर्यंत। मुझे ये करना है, कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में मुझे करना है। और उन्हीं सिद्धांतों के बल पर आगे बढ़े तो कहते हैं नियम बड़े बलवान हैं। जिन्होंने नियम बनाया और नियमित रूप से कार्य करते रहते हैं वो शक्तिशाली बन जाते हैं। आप भी, अब से भी अपने दिनचर्या के लिए, अपने जीवन के लिए संगमयुगी जो शेष दिनचर्या, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खत्म हो जाए, माना जो भी जीवन के दिन और बचे हैं उनको भी सफल करने के लिए 3-4 बातों का अपने जीवन के लिए सिद्धांत बना ले। मुझे इस जीवन में कभी भी इस चीज को लाना नहीं है और दूसरा ये चीज करके रहना है। जैसे उदाहरण के लिए आपने अमृत वेले को पक्का कर लिया कि मुझे कुछ भी हो जाए अमृत वेले को मिस नहीं करना है, या आपने सिद्धांत बना लिया कि बाबा की मुरली को 3 बार पढ़ना ही पढ़ना है, या आपने सिद्धांत बना लिया कि कुछ भी हो जाए मुझे रोना नहीं, या आपने सिद्धांत बना लिया कि कुछ भी कोई कुछ भी करे मुझे खुश रहना है, ठान लिया, तब आप उसमें पक्का होंगे। जब तक निश्चय लेकर के हम ठान नहीं लेते हैं, प्रतिज्ञा नहीं करते हैं, तब तक उसमें सफल नहीं होते। तो दृढ़ प्रतिज्ञ होना बहुत जरूरी है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने की जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना ही खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम शिव की संतानें हैं, क्यों सोचे मार्ग सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। निश्चय करें कि मुझे करना है। जब तक ठान न ले किसी बात को तब तक वो चीजें वहीं रह जाती हैं। ये तपस्या क्या है, भट्टी में आए हैं, भट्टी क्या है, भट्टी का मतलब है तपना, तपने का मतलब है दृढ़ प्रतिज्ञ होना, भट्टी का मतलब है दृढ़ संकल्पित होना कि कुछ भी हो जाए अब मुझे अपनी अवस्था को एक रस बनाना है, शक्तिशाली बनना है, मधुबन से कुछ करके जाना है, कुछ लेकर के जाना है, परिवर्तन होके जाना है, परिवर्तन करके जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से एकांत में बैठकर अंतर्मुखी होकर अपनी चेकिंग करें कि मेरा समय कहां जा रहा है। तो एकाग्रता के लिए अंतर्मुखी होना बहुत जरूरी है। बहिर्मुखता बहुत बड़ी है। एक जगह कल्चर प्रोग्राम हो रहा है एक जगह, और एक जगह योग का प्रोग्राम हो रहा है। अब आपका मन कहां जा रहा है, कहते योग तो फिर भी कर लें, कल्चरल प्रोग्राम थोड़े रोज देखते हैं, आज चलो कल्चरल प्रोग्राम देख लेते हैं, है ना। तो मन आपका किधर जाता है, कितना बहिर्मुखी है उसको चेक करें। जब याद में बैठते हैं हमारी बुद्धि कहां कहां जाती है इसको चेक करें। तो बुद्धि को भटकाना बंद करें उसके लिए बहिर्मुखता के सारे दरवाजे जितने खुले हैं। आज एक माता जी आई, बहुत बुजुर्ग हो गई हैं, हमारे कमरे तक पहुंच गई, पता नहीं कैसे उनको कहीं से पता लगा, ढूंढते ढूंढते पहुंच गई शांतिवन में। कहते भैया मुझे गाना सिखाओ। मैंने कहा गाना सिखाओ, बूढ़ी हो गई एकदम, लेकिन बहुत बहुत पुरुषार्थी आत्मा। कहते भैया मुझे गाना सीखना है। मैंने कहा गाना सीख क्या करोगी। नहीं नहीं नहीं, आप हटाओ नहीं, मुझे आपको देखती हूं तो मुझे गाने का मन करता है। आज मैं वहां बीके कॉलोनी से चल के आई, मुझे आपसे मिलना था, मुझे आपसे सीखना है, गाना सीखना है। मैंने कहा मैं क्या सिखाऊं, मैंने खुद सीखा नहीं तो आपको क्या सिखाऊं। कहती नहीं 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 मुझे सीखना है। तो मैंने कहा अब सीख के क्या करोगी, बाबा तो कहता है बच्चे गीत कविता गाना वाना ये सब छोड़ो, ये तो सेवा है तो हम करते हैं, और अब तो गाने से तो बेगाना होना है, अब तो ऊपर जाना है, अब गाना क्या करना है। कहते नहीं नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना। पीछे पड़ गई माता जी। फिर मैंने उनको बिठा के उनको सिखाया। मैंने कहा सीख करके गाना गाना नहीं, बाबा कहता है बच्चे जो अंदर की खुशी है, जो मिला है उसको खूब नाचो, जो मुख से निकले वही गाना है, और जो आता है वही गाओ, टेढ़ा मेढ़ा गाओ कैसे भी गाओ, नाचो कूदो खुश रहो, इसको गाना कहते हैं। और गाना गाने के बाद भी रो तो उसको गाना नहीं कहते हैं। जब उसको समझाया तो समझ में माता जी को आई। तो हमको देखकर कई भाई बहनों को ऐसे लगता है कि मैं भी गाना सीख जाऊं, ये सीख जाऊं। एक कविता बना रहा है बेचारे, दो लाइन बनी है, आगे लाइन बन ही नहीं रही है, बहुत दिन लग गया है बन ही नहीं रहा। फिर वो लिख करके नोट करके लाए, कहा भाई जी कई दिन से लिख रही हूं आगे बढ़ ही नहीं रही लाइन, आप तो तुरंत ही लिख देते हैं आगे का, आप बताओ ना, अब बताओ। मैंने कहा हजारों गाने लिखे हैं, अब नया गाना क्यों बना रहे हो, क्यों उसके चक्कर में पड़ी हो, जितना बन रहा है उसी में गाओ, और जो बना बना है इतना बना के रखा है बाबा ने आपके लिए, अब गाओ ना, उसमें क्या है वो दो लाइन के पीछे पड़े। इसलिए योगी जीवन को सफल करना है तो शोक से और शौक से मुक्त रखिए। जितने नए नए शौक आप पालेंगे उतनी बुद्धि बहिर्मुखी होगी, उतने साधन आप इकट्ठे करेंगे, और जितने साधन इकट्ठे करेंगे साधन को संभालने में सुरक्षित करने में आपका मन इतना जाएगा कि आपके पास समय नहीं बचेगा और ऊर्जा भी जाएगी, संकल्प भी जाएंगे। आपके पास कई चीजें हैं, जिनके पास दो ही कपड़े हैं उसको सोचना ज्यादा नहीं है, एक कपड़ा धुलाई करता है एक पहन लेता है, और जिनके पास 10-20 कपड़े हैं या जिनके पास ज्यादा है तो सोचता है ये पहनूं कि वो पहनूं, हाँ जिनके पास ढेर सारा चीज है ये बनाऊं कि वो बनाऊं, जिसके पास बनाने के लिए वही चीज है वो वही बनाएगा, जिसके पास पहनने का ही वही चीज है वो वही पहनेगा। तो जितने साधन होंगे उतनी बुद्धि का विस्तार होगा। अब समेटने का समय है, वापस घर जाने का समय है, इसलिए अपने को समेटते चले, समेटते चले। और बुद्धि को भटकाने का हमारी इंद्रियों का जो आकर्षण है ये बुद्धि को बहुत भटकाता है। इंद्रियों का आकर्षण जो जीव है ये बहुत भटकाता है। जब हम भोजन करने बैठे तो देखें कि हम भोजन कितना ले रहे हैं, कितना लेना है, आसक्ति बस खा रहा हूं कि जितना भूख है उतना ले रहा हूं, और क्या जो मैंने भोजन लिया उस भोजन के प्रति मेरे भाव कैसे, देख रहे हैं आप बहुत अच्छा है रंग बिरंगा है, या किसी के थाली में आपने देखा मेरी थाली में तो दो ही आइटम है, इसके थाली में तो कई आइटम है, आपकी बुद्धि जा रही है, भले वो फीका ही क्यों ना हो, वो कुछ कैसा भी हो। यहां पर दिखाते हैं, हमारे ब्रिजमोहन भाई जी बताते थे कि बाबा बैठे भोजन कर रहे तो हमारे मन में आए कभी बाबा से मैं भी कुछ खा लूं, कुछ मिल जाए। तो एक दिन बाबा खा रहे थे और मैं भी इसी चक्कर में था दूर से, तो बाबा ने बुला लिया, हमारे मन के भाव को जान लिया कि खाना चाहता है बच्चा कुछ, तो बाबा ने बुलाया और फिर जो खा रहे थे बाबा ने उसके मुंह में डाल दिया। अब क्या खा रहे थे बाबा, करेला उबला हुआ, जब मुंह में डाला तो उसके तो देखो तो न खाया जाए न निगला जाए न अंदर जाए न बाहर जाए, अब करे तो क्या करे। मम्मा देख रही थी, मम्मा ने बुलाया उसको, कहा कोई बात नहीं। तो कहने का भाव ये है, कभी कभी हम देखते हैं कि भाई इनके पास ये है। अच्छा, कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी भी होती है। मैं एक व्यक्ति को देख रहा था, मैं भोजन पे बैठा देखा तो जहां चल रहा है उसकी नजर चलता भी जा रहा है और सबकी नजर सबकी थाली में देखता भी जा रहा है, देखता जा रहा धर धर देखता जा रहा। मैंने कहा वो सोच रहा है कि कोई भी थाली में कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं लिया है, और किसके थाली में क्या है वो वही देख रहा है। तो बहुत लोगों के ध्यान इसमें होता है, हम अपनी इन प्रवृत्तियों पर अंकुश करें। एक राजयोगी जीवन के लिए अगर भोजन की बड़ी आसक्ति है तो यह भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। हां, भोजन करना इसका मतलब यह नहीं है कि हम फीका खाएं तो मना भूसा खा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। भोजन लें, जो उसमें नमक चाहिए जो भी चाहिए उसको लें, लेकिन बहुत ज्यादा लालच में मत जाए। बेस्वाद न खाएं, स्वादिष्ट खाएं, ठीक है, उसको स्वादपूर्ण बनाएं, लेकिन स्वादिष्ट अति स्वादिष्ट बनाने के चक्कर में न जाएं। कई भाई बहने आते हैं, यहां पर आते हैं, मधुबन में जाएंगे, भोजन कैसे होगा, मुझे फीका फीका खाना होगा, वहां तो मजा नहीं होता है। तो कई भाई बहने अपने साथ तिखट लेकर आते हैं और कुछ और चीजें लेकर आते हैं, उसका मसाला बना करके ले आते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट भी लाते हैं कई लोग, कई तो खाखरा वगैरह भी ले आते हैं, कुछ और चीज लाते हैं। जब तक भोजन चटपटा न हुआ तब तक योगी जीवन का जो आनंद है वो आनंद ही नहीं आता है। ऐसे हमारी प्रवृत्ति ढेर सारा विस्तार है, मैं सबके लिए नहीं कहता हूं, लेकिन अगर है ये तो इस प्रवृत्ति से हमको बचना चाहिए। हमारे कन रस है, हमारी जिह्वा का रस है, हमारी आंखों का रस है, हमारे स्पर्श का रस है, और ये जो जांच प्रदूषण मंत्रालय हमारा है, मैं कभी कभी आज सवेरे भी एक क्लास था उसमें बता रहा था कि मैं जब याद में बैठता हूं तो अक्सर करके मैं ये राजतंत्र बनाता हूं कि मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने, शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रकुटी बीच दरबार अपना सजाएं, करे मंत्रणा अपने मन मंत्री से, समाचार पूछें सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से राधानी को माया की छाया से पल पल बचाए, बुद्धि कम उनसे बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। बहुत अच्छा ये, मैं राजा बनकर के अपना राज दरबार लगाता हूँ, बुद्धि से पूछता हूँ, संस्कारों से पूछता हूँ, अटेंशन पूछता हूँ, मेरे चौकीदार अच्छे हैं, मेरे राज कारोबार सब अच्छा है, मैं राज दरबार लगाता हूँ। लेकिन खाना खाने बैठे और अगर किसी को देखा जलेबी है, कहीं गुलाब जामुन है, कहीं कुछ पकौड़ा है, जिसको जो अच्छा लगता है वो कहीं अच्छा देखा और हमारी बुद्धि गई तो एक मिला, एक और मिल जाए, कितना अच्छा है। जब गई बुद्धि गई और मुंह में पानी आया तो उस समय तो राजा रहा नहीं, फिर क्या होता है, राजतंत्र खत्म और लोकतंत्र शुरू, डेमोक्रेसी। तो फिर क्या होता है, मैं आत्मा राष्ट्रपति नाम मात्र का ऊपर मैं राष्ट्रपति बन जाता हूं और मन हमारा जो है वो प्रधानमंत्री बन जाता है, और ये सिर जो है ये शिक्षा मंत्री बन जाता है, सिर मस्तिष्क, ये आंखें कानून मंत्री बन जाते, कानून अंधा होता है ना कहते हैं ना, ये कानून मंत्री बन जाता है, ये कान क्या है, ये संचार मंत्रालय, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, कम्युनिकेशन का है, और मुख्य है सूचना प्रसारण मंत्रालय, यहां सूचना प्रसारण मंत्रालय है, ये जीभ क्या है, दांत क्या है, ये उद्योग मंत्रालय यहां है, खाने पीने का उद्योग धंधा चलता रहता है, ये चमड़ी क्या है, ये रक्षा मंत्रालय है, अगर ये न रहे तो शरीर की रक्षा कैसे हो, ये नाक क्या है, ये जांच प्रदूषण मंत्रालय है, यहां वो भोजन वोजन में सब जांच होता है ना तो ये जांच प्रदूषण मंत्रालय आ जाता है, और ये रस लेने में आया, ये कर्मेंद्रियों का रस होता है, तो एक है उद्योग मंत्रालय है कि खाद्य मंत्रालय है, खाद्य मंत्री होते हुए ना भोजन वोजन के संबंध में, ऐसे हाथ क्या है, रोजगार मिनिस्टर, अगर कुछ रहोगे नहीं तो बड़ौदा में रहकर क्या खाओगे भाई, कुछ कमाओ तो कमाना तो पड़ेगा है ना, तो ये उद्योग, ये रोजगार मिनिस्टर। ये पेट क्या है, परिवार कल्याण मंत्रालय, यहाँ ये होम मिनिस्ट्री है, यहाँ पर है पूरा होम मिनिस्ट्री काम, फेफड़ियों वगैरह द्वारा रक्त संचार का है, यहाँ पर ये होम मिनिस्ट्री है। ये टांगे क्या है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, आज सारा भारत ट्रांसपोर्ट पर ही चलता है, कितने लोगों के ट्रांसपोर्ट खराब हो गए हैं है ना, तो यहाँ देखते देखते फिर क्या करते हैं, चलते इधर है, यहाँ खट बोल रहा है, इधर खट बोल रहा है, जैसे वहां डेमोक्रेसी में जब होता पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में होता है तो कुर्सी उठाइए, माइक उठा लिए, वर्कआउट कर रहे हैं ऐसे, तो इसमें भी खटर पटर होता रहता है पूरे शरीर में, तो ऐसा भी करके आनंद लेते हैं। तो आप सब भी इस प्रकार से अपनी जांच करें, और जितने भी बाहर बुद्धि भटकने के मार्ग हैं उनको रोकें, उनको बंद करें। रोकने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? मन की एकाग्रता के लिए अपने मन को अच्छे संकल्पों से भर लें, शुद्ध संकल्पों से श्रृंगार करें, अच्छे अच्छे विचार। मेरी तो आंखें उठती हैं और जहां भी देखता हूं तो लिखा जहां होता है उसी पर मेरी बुद्धि जाती है। तो अपने लिए क्या करें, एक बोर्ड बना लें या स्लोगन बना लें, जहां पर भी आप जाते हैं अपने आसपास वो रख लें। जितने अच्छे अच्छे चीज रखें, अपने कमरों में भी अच्छे स्लोगन के प्रेमी हो अच्छे अच्छे स्लोगन नोट कर लें, मुरली से भी मेन मेन पॉइंट नोट कर लें, मुरली को बार बार पढ़ें और जो सबसे अच्छे पॉइंट हो उस पर चिंतन और मनन हो, ये आपको मदद करेगा। प्रभु प्रेम में डूबा हुआ मन ही एकाग्र हो सकता है, ज्ञान अमृत से भरा हुआ मन ही एकाग्र हो सकता है, सब संबंधों का रस लेने वाला ही बाबा से, सब संबंधों का रस लेने वाला ही मन एकाग्र हो सकता है, एक रस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। लक्ष्य और उद्देश्य पूर्ण मन ही एकाग्र हो सकता है, लक्ष्य और उद्देश्य पूर्ण मन ही एकाग्र हो सकता है। और इसके साथ जो अपने विस्तार को सार में समेटे, जिनको समय का ध्यान होता है उनका मन एकाग्र हो सकता है, अच्छे चिंतन करने वाले का मन एकाग्र हो सकता है, अच्छे चिंतन। बाबा की मुरली से बढ़कर कोई चिंतन नहीं। बहुत सारे लोगों का मन होता है ये भी पढ़ लूं, बाहर की किताब पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं। आप एक बात मान के चलिए, बाबा की अव्यक्त वाणियों से बेहतर, भगवान के महावाक्यों से अच्छा इस संसार में किसी के वाक्य नहीं हो सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है। इसलिए अभी तक पढ़ा हो तो भूल जाओ और आगे पढ़ने की जो इच्छा है उसको समाप्त करो, और बाबा की मुरलियों का इंटरेस्ट तब बढ़ेगा जब वो अनुभव में आएंगे। बहुत सारे भाई बहने जब ज्ञान में आते हैं तो अव्यक्त मुरलियों को समझ नहीं आता, तो एक भी लाइन डाइजेस्ट नहीं होता है, एक लाइन पढ़े, दो लाइन पढ़े, तीसरी चौथी लाइन पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती, क्योंकि इतना गहराई है उनमें कि वो अपवित्र और बहिर्मुखी वृत्ति के व्यक्तियों की बुद्धि में वो आता ही नहीं। और जिसने प्रेम से उसको बार बार पढ़ा और एक एक लाइन का, एक एक स्टेंजा का, पैराग्राफ का आनंद लेना शुरू कर दिया और याद करने की कोशिश किया, जब आपको याद रहने लगेगा तब आपकी इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा। मैं अभी अपनी बात इसलिए कह रहा हूं कि नहीं कि आत्म प्रशंसा के लिए, लेकिन संडे की मुरली है उसकी अभी से ही कल ही कविता बना दी और उसका फिर ऑडियो बाद में बनाऊंगा। उसका स्वमान है, स्वमान के सवेरे जाता हूं योग में तो वो पढ़ लेता हूं, उसके स्वमान के पॉइंट्स एक हफ्ते का होता है, सब याद कर लेता हूं, और वही याद करके जो है मनन चिंतन भी होता है। याद में भी बैठे तो भी बिना चिंतन के आप योग बल जमा नहीं कर सकते। जिनके पास सशक्त चिंतन है वही सशक्त योगी बन सकते हैं। आज बाबा ने कहा ना कि अद्वैत राज उसका आधार है योग बल। योग बल कैसे होगा? अच्छे चिंतन से। तो आइए हम अपने मन को एकाग्र करें, क्योंकि एकाग्रता से ही एक रस स्थिति बढ़ेगी और संतुष्टता आएगी। संतुष्टता के लिए त्याग वृत्ति चाहिए, वैराग्य वृत्ति चाहिए, बेहद का वैराग्य हो। उसमें सफल तपस्या तब होगी जब हमारे अंदर त्याग की वृत्ति होगी, एक रस स्थिति होगी, तब हमारी सफल तपस्या होगी। और सफल तपस्या से ही हम एक रस स्थिति, जिसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ अवस्था, हमारी स्थित प्रज्ञ अवस्था तब बनेगी जब हमारी एक रस स्थिति। आने वाले दिनों में हमारी बुद्धि को भटकाने के लिए बहुत कारण बनेंगे, बड़े चिंतन होंगे, लेकिन एकाग्र होना, एकरस स्थिति का बनाना, बुद्धि को एकाग्र करना, स्थित प्रज्ञ योगी बनना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए आप चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा और बहिर्मुखता से हट करके एकाग्र करके बाबा में समा जाएं, बाबा में बुद्धि। अपना दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ करें ऊपर, ऐसे अनुभव करें कि बाबा की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण सारे गुण, सारी विशेषताएं, बाबा के सारे खजाने सब मैंने बाहों में भर लिया। ऐसे हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे ज्यों आ गए हैं शीतल शीतल झरनों के नीचे, जैसे मैंने पूरा ब्रह्मांड अपने दोनों बाहों में भर लिया, बाबा को देख रहा हूं, बाबा को देख रहा। नीचे करें, ऐसे हाथ करें, अनुभव करें कि बाबा मेरे सिर पर हैं, बाबा की लाइट आ रही है, बाबा की लाइट आ रही है, मुझ आत्मा पर, मैं आत्मा चमक रही हूं, बाबा किरणें लाइट और मैं आत्मा, बाबा किरणें और मैं आत्मा, बाबा किरणें और मैं आत्मा। अपना सिर, सिर पे हाथ रखें, दाहिना हाथ रखें, थोड़ा प्रेस करें, अनुभव करें बाबा की समस्त शक्तियां, बाबा की किरणों की भुजाएं मेरे सिर पर हैं, शिव बाबा की समस्त शक्तियों के नीचे मैं कृपा पात्र बनकर के विराजमान हूं, बाबा की संपूर्ण शक्तियां मुझ शरीर, मेरे शरीर में प्रवेश हो रही है, मेरा मस्तिष्क शक्तिशाली बन रहा है, ऊर्जा से मैं अनुप्राणित हो रहा हूं, मेरे रोम रोम में, रंध्र रंध्र में परमात्म शक्तियां समाहित हो रही है, मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न बन रही आत्मा हूं। इसे करें और अभ्यास कर लें पांचों स्वरूपों का। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज न्यारा, बोली, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा, ओम शांति।